सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे युवा साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि ये जो नया वर्ष है आपके प्रयासों को सफल बनाने वाला सिद्ध हो। लेकिन दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं एक जगह हैं, प्रयास तो आपको करने ही होंगे। आज के मुख्य विषय के तहत मैं जो कल बात कर रहा था, आप सबसे बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ता हूं, इसी विषय पर बात करूंगा और पढ़ने के स्तर के बारे में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन आइए पहले दो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, खासकर मुख्य परीक्षा में, इस बात का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप करंट अफेयर्स से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर निर्वाचन आयोग, देखिए निर्वाचन आयोग अभी उत्तर प्रदेश गया था, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात कही है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और ओमिक्रॉन का संकट दिखाई दे रहा है तो सरकार से उसने एक अर्ज की कि बेहतर होगा कि चुनाव टाल दें, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राइट। स्थितियां गंभीर होती चली जा रही हैं, चुनाव आयोग को अब यह फैसला लेना है कि निर्वाचन कराए जाएं या न कराए जाएं। बकायदे वो उत्तर प्रदेश गया, वहां दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उन सभी से बात की और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि राजनीतिक दल चाहते हैं, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव हों। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बारे में जो भी प्रोटोकॉल होंगे, जो भी एहतियात बरते जाएंगे, उनका पालन किया जाएगा और चुनाव होंगे। डेफिनेटली चलिए चुनाव तो होंगे ही, लेकिन वो जो भीड़ लगेगी उससे हो सकता है कि कोरोना का एक बार फिर से बहुत ही भयानक विस्फोट हो, जैसा कि पिछले लहर में हम लोगों ने देखा है, भोगा भी है इस देश ने। तो दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग का अपना एक स्टैंड है और इससे पहले भी आपने कुछ दिनों पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं वो जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो इसको लेकर के भी कुछ लोगों ने उंगली उठाई, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका अपना एक अलग स्तर है। तो लोगों का कहना था कि नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री अगर चाहते तो अपना संदेश भेज सकते थे, बात कर सकते थे। जो भी स्थिति हो, निर्वाचन आयोग का जो स्टैंड है, अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से सामने आता है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेटेस्ट न्यूज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसी बीच में आप 2-3 घटनाएं देख रहे हैं कि कैसे हरिद्वार में जो हमारे साधु संतों का एक जो सम्मेलन हुआ था उसमें बातें कही गई, इसको लेकर के दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें हिंदुओं को शस्त्र से लैस होने की बात कही गई थी। फिर रायपुर में जो एक धर्म संसद हुआ उसमें गांधी जी के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया गया, नाथूराम गोडसे का अभिवादन किया गया, वो भी देश में एक तरीके से विवाद का कारण रहा और बाद में फिर वो जो सब महंत थे उन्हें गिरफ्तार भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। ये घटनाएं हैं और ये घटनाएं उस रूप में सीधे सीधे पूछे जाने वाली घटनाएं नहीं है कि यूपीएससी सीधे इस घटना पर बात करेगा, लेकिन इसको आधार बना करके वो जरूर पूछ सकता है। पूछने की जो बात है वो हिंसा से जुड़ी हुई हो सकती है। कल मैंने जो आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था उसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई थी कि जिन राज्यों में, समुदाय में, राष्ट्रों में धार्मिक सहिष्णुता अधिक होती है उनमें विकास की गति तेज होती है। मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के आप लोग अपने अपने स्तर पर प्रैक्टिस करें, प्लीज मुझे न भेजें, अपने अपने स्तर पर ही प्रैक्टिस करें, आपस में डिस्कस करें, फिर एक दूसरे के उत्तर को दिखाएं भी, तो इससे आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 4th पेपर है आपका एथिक्स का, उसके लिए इस तरह के विषय जरूर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे अभी राज्यसभा के 12 सांसदों को, शायद 12 ही थे, सभापति जी ने निलंबित कर दिया, पूरे संसद सत्र के दौरान, राज्यसभा के सत्र के दौरान उनको बैठने की अनुमति नहीं दी गई। उनसे केवल इतना कहा गया था कि आप क्षमा मांगिए कि आपसे गलती हुई है, लेकिन सांसदों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो 4th पेपर के लिए फिर से हमारे पास एक टॉपिक आ गया, क्षमा, कि सार्वजनिक जीवन में क्षमा का क्या रोल हो सकता है। आप चाहें तो इस पर भी विचार कर सकते हैं, इस पर भी कोई छोटा सा 100-200 शब्दों का एक उत्तर लिख सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस आपको करने चाहिए और जब भी आप इनके उत्तर लिखें तो लेटेस्ट जो घटना है उसे कहीं ना कहीं जरूर इंक्लूड करें, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि नहीं नहीं, आप अपने समसामयिक स्थितियों से पूरी तरह परिचित हैं और उन घटनाओं का उपयोग करना भी जानते हैं। दोस्तों, आज मैं दैनिक भास्कर का एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है विकास का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। इसे आप पढ़िएगा, खासकर इसके पीछे मेरा मकसद है आपको प्रोवाइड करने का कि आप देखिए कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर कितना तार्किक है। इसके कुछ जो हिस्से हैं नीचे तक नहीं पहुंच रहा है उसको बहुत ही तार्किक रूप से उन्होंने स्पष्ट किया है। ऐसे नहीं कि नहीं पहुंच रहा है, धनी लोगों के पास में ज्यादा पैसा आता चला जा रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था तेज होती चली जा रही है, धनी व्यक्ति धनी होते चले जा रहे हैं, गरीब व्यक्ति गरीब होते चले जा रहे हैं। ये उत्तर लिखने का बहुत ही बेकार किस्म का तरीका है, यह आपको कभी भी मार्क्स नहीं दिला सकता जब तक आप अपनी बात को तथ्यपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से नहीं कहेंगे। और इसमें यही कहने की कोशिश की गई है, तो आप इसे एक मॉडल एडिटोरियल कमेंट कह सकते हैं जो अपनी बात को बहुत पावरफुल तरीके से, तथ्यपूर्ण तरीके से, और इस तरीके से कहता है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सामने वाला कन्विंस हो जाए। अगर आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं तो विश्वास कीजिए कि चाहे वो जनरल स्टडीज का ही पेपर क्यों ना हो, 10 में आपको 7 नंबर तक मिल सकते हैं। तो इस रूप से में आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं, किराना दुकानों को मिला नया साझेदार। इसे भी आप सब पढ़ें और इस पर एक छोटा सा नोट तैयार कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेजॉन और ये सब जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म आते चले जा रहे हैं उसको लेकर के जो हमारे रिटेलर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, और ये इकोनॉमिक्स का एक अभी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, तो इसमें आपको कुछ अच्छी बातें मिलेंगी। याद रखिए कि जब कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हों या एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ रहे हों तो जरूरी नहीं है कि उसकी सारी चीजें ही आपके काम की हों। अगर एक लाइन भी आपको मिल जाता है, एक शब्द भी मिल जाता है, तो मान करके चलिए कि आपका पढ़ना सार्थक हो गया, और इतना तो मिल ही जाता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अदरवाइज अगर चलताऊ ढंग से पढ़ेंगे तो जिसमें सारी चीजें आपके काम की हो, पता लगा कि उसमें से एक भी चीज आपको नहीं लगी कि ये काम की हो सकती है, तो ये तो आपके पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर जिसकी चर्चा मैंने कल शुरुआत की थी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं बहुत पढ़ता हूं, इतना मैंने इकट्ठा कर लिया, इतना लिख लिया, इतने नोट्स बना लिए, अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परेशान है, परीक्षा में बैठते हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आ पाते। स्वाभाविक है कि ऐसा ही होगा। कल मैंने आप सबके सामने किसान की जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसका रूपक रखा था, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उस रूपक को बड़े खूबसूरत तरीके से, जी हाँ, बड़े खूबसूरत तरीके से अपने मेल में लिखा है, व्यक्त किया है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि बिना एक्सप्लेनेशन के ही वो समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी हाँ, यही पढ़ने का तरीका होता है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने कितनी सारी किताबें पढ़ ली हैं, यूपीएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके चश्मे का नंबर कितना बढ़ गया है, इससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए, कोई लेना देना नहीं है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो दोनों हमारा मूल्यांकन करता ही इस आधार पर है कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूं। अरे बाप रे, वो तो रात दिन पढ़ रहा है, तो सोसाइटी आपकी इज्जत करने लगेगी कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, सोसाइटी आपकी इज्जत करने लगेगी, ये बहुत मेहनत कर रहा है। दोस्तों, मेहनत करना तो अधिकार है आपका, और उससे भी बड़ी बात यह है कि कर्तव्य। अधिकार की बात मैं प्रिविलेज के रूप में कह रहा हूं। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच करके देखिए कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। हर कोई कर रहा है क्या, या हर कोई कर सकता है क्या? तो आप बहुत ही प्रिविलेज्ड लोगों में हैं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां बहुत जरूरी है कि आप उस तरीके से तैयारी करें जिस तरीके से इसकी तैयारी की जानी चाहिए। घंटों से तैयारी नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने से तैयारी नहीं होती है। तैयारी का अपना एक पैटर्न होता है, जब तक आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, इतना बड़ा कंपटीशन है, लाखों स्टूडेंट बैठ रहे हैं, कितने उसमें टॉपर्स हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको उनका मुकाबला करना है। कैसे करेंगे, केवल घंटों के आधार पर? नहीं, यूपीएससी का जो भी फॉर्म होता है, चाहे प्री मेंस का हो, किसी में ये नहीं लिखा हुआ होता है कि आप बताइए कि आपने इसके कितने घंटे तैयारी की। इसलिए अपने दिमाग से ये घंटे का जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल निकाल दीजिए। और सीधी सी बात है कि बहुत पढ़ने के बाद भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी करने के ढंग को तुरंत बदल देना चाहिए। उस पर सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां गलत हूं। बिल्कुल, आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बात हालांकि आपको मेरी थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपने गलत रास्ता पर चुना हुआ है और गलत रास्ते पर चल रहे, चलने का काम कर रहे हैं। उसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं कि आप मेहनती हैं, लेकिन अगर आपका रास्ता सही नहीं होगा तो मंजिल कैसे वहां हो सकती है जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं? वो रास्ता आपको गलत जगह पर ले जाएगा, उस जगह पर नहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, रूपक का बहुत सही इस्तेमाल किया गया, स्टूडेंट्स ने मुझे लिख करके भेजा। मैं थोड़ी सी बात ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा, या ऑनलाइन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, देखिए शायद वह रूपक और क्लियर हो जाए। मैं डेली ऑडियो लेक्चर के तहत कितने इंफॉर्मेशन की चर्चा करता हूं, ये खबरें, इतने सारे अखबार होते हैं, चैनल्स, न्यूज देखता हूं, और इसके बाद उसमें से कुछ खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। सोचिए कि उस ढेर में से मैं क्या चीज आपके सामने रख रहा हूं। फिर जब एक महीने की सारी खबरें रखने के बाद आपको केवल एक घंटे या ज्यादा से ज्यादा 70 मिनट का एक कैप्सूल प्रोवाइड करता हूं कि महीने भर की ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसकी तुलना में काफी कम होती हैं। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो एक दिन में अगर एवरेज में 3 खबरें देता हूं तो 25 दिन अगर डेली ऑडियो लेक्चर आ रहा है या 20 दिन आ रहा है चलिए, तो मैं 60 दे रहा हूं, 20 या 60। लेकिन पता लगा कि मंथली में 60 की जगह पर कुल 10, 12, 15 रह गए हैं, वहां भी सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बाद में करंट अफेयर्स पर कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो मॉक टेस्ट के फॉर्म में रहते हैं, उसमें संख्या और भी ज्यादा कम हो जाती है। और ये जो कम हुई संख्या है दोस्तों, यही आटा है और यही तेल है। हमें इसी तरह से पिरामिड के पैटर्न पर प्रिपरेशन करना पड़ता है। पिरामिड का नीचे का हिस्सा काफी चौड़ा होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाते हैं, हिस्सा संकरा होता चला जाता है। अगर पिरामिड आप न कहना चाहें तो आप मंदिर के शक्ल को ले लीजिए, तो धीरे धीरे वो शंकुक आकार में ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैंने ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बताया था, कुछ किताबों में ठीक है उल्लेख भी है, लेकिन सवाल यह है कि जब हम किताबें पढ़ेंगे तो किन किन बातों को हम ध्यान में रखें? अगर हम पूरी किताब को याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या यह संभव है? संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में यही होता है कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, तभी जाकर के हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, सोनल सरताबे पुणे महाराष्ट्र से, राजेश कुमार चंडीगढ़ से, और रोहितास गुर्जर जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, अब तो एक साल के बाद ही मुलाकात होगी, 2 दिन बाद ही, यानी कि 2022 में, अभी 2021 है। सब अपना अपना ख्याल रखें। एक बार फिर से मेरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार करें, साथ ही मेरा अभिवादन भी। 2 दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी, तब बातें करेंगे। नमस्कार।